நமோ ரிகந்தானம், நமோ சித்தானம், நமோ ஆரியானம், நமோ உபஜானம், நமோ லோயே திரிகாலவர்த்தி சவசாமம். மங்களம் பகவான் வீரோ, மங்களம் கௌதமோ பரிய, மங்களம் குண்டுகுந்தாரியோ, ஜெயந்த தர்மோஸ்து மங்களம். சர்வ மங்கல்யம் மங்கல்யம், சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம், சர்வ தர்மானம் ஜெயந்தம் ஜெயத்து சாசனம். ஓம்கார பிந்து சயுக்தம் நித்யம் தியாயந்தி யோகினம், காமதம் மோக்ஷதம் செய்வ ஓம்காராய் நமோ நமோ. நம சமய சாராய ஸ்வானுபூத்ய சகாஸ்தே சித்ஸ்வபாவாய பாவாய சர்வ பாவாந்தர்ச்சிதே. அக்னாந்திமிராந்தானாம் ஜ்ஞானாஜன் சலாகயா சக்ஷுருன்மிலித்தம் யேனம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஆத்மா ஜ்ஞானம் ஸ்வயம் ஜ்ஞானம் ஜ்ஞானாத் அந்யத் கரோதி கிம் பர்பாவஸ்ய கர்த்தாத்மா மோஹோயம் வியவஹாரிணம். மங்கள்மய் மங்கள்கரம் வீத்ராக் விஜ்ஞான நமுதாஹி ஜாதே பய ஹரிஹந்தா தி மகான். ஓம் நமஸ்தே தேவிய, நமஸ்தே தேவிய, நமஸ்தே தேவிய. ஜினேந்திர பரமாத்மா கா சாசன், குன்குன் ஆச்சாரிய பகவான் கி அம்னாய், அமிரச்சந்திர ஆச்சாரிய பகவான் கி பரம்பரா, ஓர் உஸ் பரம்பரா மே பூஜ்ய குருதேவ் ஸ்ரீ கா பௌதாபினாசினி சாநித்ய, ஜிஸ் சாநித்ய கே அந்தர்கத் அபன் சமயசார பரமாகம் கிரந்த ஜோ இஸ் யுக கா பாரத் கா பகவான் ஹை, வோ மஹாமங்கல் பரமாகம் சாஸ்திர கி ஜீவதிகார் கி சட்டி கதா பே பூஜ்ய குருதேவ் ஸ்ரீ கா அத்புத் அலௌகிக் சுதாத்மா கோ ஹதேலி மே பதானே வாலா பிரவச்சன் அப்பன் சுன் ரஹே ஹே. சட்டி கதா கே அந்தர் மே சிஷ்ய கா பிரஸ்ன கே சுதாத்மா கோன் ஹை, ஜின்கே ஸ்வரூப் கோ ஜான்னா சாஹியே, உஸ்கே உத்தர் மே பஹலே பேராகிராஃப் கே அந்தர் மே தியேய கி பாத் பதாயி कि जो भगवान आत्मा है, ज्ञायक एक भाव जो है वो अप्रमत और प्रमत से रहित, अनादि से अपनी सत्ता स्वयं सिद्ध होने से, अपनी सत्ता से ही स्वयं है, अनादि अनंत है, किसी के द्वारा उसका उत्पाद नहीं होता, किसी के द्वारा उसका विनाश नहीं होता, नित्य उद्योतमान है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा ज्ञायक एक भाव ये बात बतला कर संसार अवस्था में अनादि से क्या दोष हो रहा है, क्या परिस्थिति उसके साथ घटित हुई, उसका ज्ञान कराकर, ज्ञान कराकर फिर यह कहते हैं कि उस भाव रूप यानी सुभाषुभ भाव रूप भगवान आत्मा नहीं परिणमता, क्योंकि जब सुभाषुभ भाव रूप नहीं परिणमता तो अप्रमत और प्रमत ऐसे गुण भेद जो जड़ भाव है उस रूप भी भगवान आत्मा नहीं परिणमता, यह कहकर फिर समस्त अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न आत्मा की उपासना करने से उसे शुद्ध कहने में आता है। बस वो अंतिम लिटी पे गुरुदेव की कुछ बात है वो कहकर फिर अपन दूसरा पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे। 208 नंबर का प्रश्न है, ऊपर में जो बात कह दी कि जिनकी दृष्टि पर द्रव्य और पर भाव के ऊपर से छूट गई और भेद पर्याय का पर्याय उसमें नहीं है, ऐसे पर्याय से लक्ष्य छूट गया, अन्य द्रव्य का भाव से लक्ष्य छूटा, उनका अर्थ अन्य द्रव्य का भावना भाव से लक्ष्य छूटा तो राग से भी छूटा और राग से छूटा तो पर्याय से भी लक्ष्य छूट गया और सीधा भगवान आत्मा के ऊपर आने से सम्यक दर्शन पहली धर्म की इस चीज ऐसी चीज है बापू, लोगों ने एमने एम जिंदगी चाली गई तत्वनी दृष्टि क्रिया विना है तो 84 ना अवतारमा करिया बापा, 84 ना अवतार है कोई त्या नहीं तारू कि तू त्या नहीं त्या जईने और क्या जईने उतर से, तो ऐसी परिस्थिति है तो एक बार जहां प्रभु है वहां नजर करने, देखिए कितनी निष्कारण करुणा है, वस्तु की व्यवस्था बतलाकर सभी को भगवान आत्मा ही जानने में आता है ऐसा कहकर अब कहते हैं कि अब जब प्रभु पर्याय एक समय की पर्याय के समय प्रभु पड़ा है उसके तरफ देख, तो कहते एक बार जहां प्रभु छे त्या नजर करने, मैंने जैसे आदेश देते हो कि जहां प्रभु पेड़ो छे त्या नजर करने, जहां भगवान चैतन्य स्वरूप है प्रभु एक लो अनंत અખંડ આનંદનો કંદ પૂર્ણાનંદ ચૈતન્ય રસથી ભરેલો જીન સ્વરૂપ આત્મા છે. એ ત્રિકાળ જીન સ્વરૂપ પ્રભુ વિતરાગ છે. એને પરનું લક્ષ છોડી, રાગનું લક્ષ છોડી, રાગને જાણનારની પર્યાય આમ લક્ષ છોડ્યું તો એનાથી પણ લક્ષ છૂટી ગયું, અને એનું લક્ષ જ્યાં આત્મા ઉપર ગયું ત્યારે પર્યાયમાં શુદ્ધતા પ્રગટી. બહુ છઠ્ઠી ગાથા મુદ્દાની રકમ છે. પૂરી વિધિ બતલા દી એક પેરેગ્રાફ કે અંદર. સબસે પહેલે તો જો અંતરંગ મેં પ્રભુ પડાય ઉસકે ઉપર નજર કરને કે લિયે કહેતે હૈ વો ક્યો ભગવાન કેસા હૈ તો કે ચૈતન્ય સ્વરૂપ હૈ પ્રભુ. એકલા અખંડ આનંદ કા કંદ પૂર્ણાનંદ ચૈતન્ય રસ સે ભરા હુઆ જીન સ્વરૂપ આત્મા હૈ. એ જીનેન્દ્ર હૈ, તીર્થંકર હૈ. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી દ્રષ્ટિ કે નિધાન મેં કહેતે કે ભાઈ તું તીર્થંકર છો, ભાઈ તું જીનેશ્વર છો. સ્વભાવ સે તીર્થંકર ઓર સ્વભાવ સે જીનેશ્વર હૈ, સ્વભાવ સે પ્રભુ હૈ, સ્વભાવ સે ભગવાન. જીન સ્વરૂપ આત્મા હૈ, ત્રિકાલ જીન સ્વરૂપ પ્રભુ વિતરાગ હૈ. ઉનકો પર કા લક્ષ છોડકર, રાગ કા લક્ષ છોડકર, રાગ કે જાનનાર કી પર્યાય કા લક્ષ છોડકર ઇસકે ઉપર લક્ષ આયા તો ક્યા હુઆ, આત્મા ઉપર લક્ષ આતે હી પર્યાય મેં શુદ્ધતા પ્રગટી. જ્યાં પર કા લક્ષ છોડકર, પર્યાય કા લક્ષ છોડકર, રાગ કા લક્ષ છોડકર જ્યાં અંતરંગ પે આયા તો સ્વભાવ કે ઉપર લક્ષ ગયા, ઓર જ્યાં સ્વભાવ કે ઉપર લક્ષ ગયે વહાં શુદ્ધતા પ્રગટી. મને જીસ વક્ત લક્ષ જાતા ઉસ વક્ત શુદ્ધતા પ્રગટતી હૈ. ઉસકે લિયે સમય નહીં લગતા. જીસ સમય સ્વભાવ કી દ્રષ્ટિ કરે ઉસ સમય શુદ્ધતા પ્રગટતી હૈ. તો દેર જો હૈ વો નજર કી હૈ, દેર જો હૈ વો દ્રષ્ટિ કી હૈ, દેર જો હૈ વો લક્ષ કી હૈ. ઉસકો જો પુરુષાર્થ કરના વો અપને સ્વભાવ કે લક્ષ કા પુરુષાર્થ કરના. મેં પરમાત્મ તત્વ હું એસી સમજણ કા પુરુષાર્થ કરના. મેં પરમાત્મ તત્વ હું ઇસકા તત્વ નિર્ણય કરકે ઉસકા ઉસકો પુરુષાર્થ કહેતે. પુરુષાર્થ કિસે કહેતે? જૈસા અપના સ્વરૂપ હૈ વૈસા સમજના. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કહેતે હૈ કે ભાઈ જેવું સ્વરૂપ છે વો વિકલ્પ તો કર, અપના જૈસા વાસ્તવિક સ્વરૂપ હૈ, જૈસા ત્રિકાલી સ્વરૂપ હૈ, ગાયક સ્વરૂપ હૈ, જીનેશ્વર સ્વરૂપ હૈ, એસા વિચાર તો કર કમ સે કમ પહેલે વિકલ્પો કે અંદર મેં, કે જૈસે તુજે ઇસકા જ્ઞાન શ્રદ્ધા ન હોકર પક્કા નિર્ણય હો જાય. આજ તક ઇસકા નિર્ણય ઉન્હોને નહીં કિયા, ઓર નિર્ણય નહીં કરને સે નિસંગતા નહીં આઈ. નિર્ણય સે હી નિસંગતા આતી, ઓર નિસંગતા હૈ સે હી નિસંગતા આતી હૈ. તો ઉસકો નિર્ણય કરના હોગા. નિર્ણય કિસ તરહ સે હોતા હૈ કે કેસી વસ્તુ હૈ, જીસકે અંદર મેં પર્યાય નહીં હૈ, જીસકે અંદર મેં સમસ્ત અન્ય દ્રવ્યો કે ભાવ ઉસકે ભિન્ન સ્વભાવ કી ઉપાસના કરને સે એ સ્વભાવ કે ઉપર લક્ષ જાતા હી ક્યા હોતા હૈ કે પર કા લક્ષ છૂટા, રાગ કા લક્ષ છૂટા, રાગ કી જાનનાર કી પર્યાય કા લક્ષ છૂટા. જબ પર્યાય કે લક્ષ છૂટા તો સારા પક્ષ છૂટ ગયા, ઓર સ્વભાવ કે ઉપર લક્ષ આતે હી શુદ્ધતા પ્રગટી, પ્રગટ ગઈ શુદ્ધતા. સ્વભાવ કે ઉપર લક્ષ આતે હી શુદ્ધતા પ્રગટી. અન્ય દ્રવ્યોના સમસ્ત સમસ્ત લીધું ને, તેમાં તીર્થંકરે આવ્યા અને તીર્થંકરની વાણી પણ આવી, એના ઉપરથી પણ લક્ષ છોડી દે. ક્યા હોતા હૈ? શિવ જીવ સબ જગત સે જબ છૂટ જાતા હૈ, વિતરાગી દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ કે ચરણ મેં આતા હૈ, શરણ મેં આતા હૈ, તો ફિર વહાં પે ચિપક જાતા હૈ. વો દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ જિસ વસ્તુ કો બતલાતે હૈ, જિસ સ્વભાવ કો બતલાતે હૈ, ઉસકી ઓર નહીં દેખતે. વો દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ કે પાસ ચિપક જાતા હૈ, ઉસકો ચિપકતા હૈ. વો લુ ચુંબક કી તરફ ઉધર ચિપક જાતા, વહાં સે હટતા નહીં. વો કહેતા હૈ મેરે તરફ મત દેખ, અપની તરફ દેખ, ક્યોંકિ મેં તેરી તરફ નહીં દેખતા હું, મેં અપની તરફ દેખતા હું, તું ભી મેરે તરફ નહીં દેખ કર અપની તરફ દેખ. વો ભગવાન કા દર્શન હૈ, વો દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ કા સાનિધ્ય કા સેવન હૈ. વો સાનિધ્ય કા સેવન તબ કહા જાતા હૈ, અપન કહેતા ને ગુરુદેવ શ્રી કા બહુત ઉપકાર. ગુરુદેવ શ્રી કા ઉપકાર કબ? કે ગુરુદેવ જો ગાયક તત્વ બતલાતે હૈ, જો ભગવાન આત્મા કો બતલાતે હૈ, ઉસ ભગવાન આત્મા કો જાને, ઉસ ભગવાન આત્મા કો પહેચાને, તો ગુરુદેવ કા ઉપકાર. નહીં તો બાત તો બાકી તો શુભ ભાવ કી ધારાએ ચલતી, ઉસે કુછ આના જાના નહીં હૈ. ઉસકો એ બાત સમજ મેં આની ચાહીએ કે સ્વભાવ કે લક્ષ કે બિના, સ્વભાવ કી પ્રીતિ કે બિના, અભી ચેતન મેને કહા થા ને તો પરમ, સ્વભાવ કી પ્રીતિ કે બિના પ્રતીતિ નહીં હોતી. તો સ્વભાવ કી પ્રીતિ હો તો ગુરુદેવ વહી બાત બતાતે, સ્વભાવ કી મહિમા કરતે, સ્વભાવ કી અદ્ભુતતા બતલાતે, સ્વભાવ કી અલૌકિકતા બતલાતે. ઓર યદી ઉસકો સ્વભાવ કી મહિમા આ જાય, મેં તો એસા ચૈતન્ય તત્વ, ચૈતન્ય ઘન બિંબ મેં ઇધર ભરા પડા હું, આનંદ રસ કંદ ચૈતન્ય ગાન ઘન મેં ઇધર ભરા પડા હું, એસી દ્રષ્ટિ યદી સ્વભાવ કે ઉપર આ જાય તો એક સમય લગતા વસ્તુ કે ઉપર લક્ષ જાય. વસ્તુ કે ઉપર લક્ષ ગયા તો જો લક્ષ અભી તક ચલા આયા થા વો લક્ષ કો છોડા, વહાં સે હટા, ઉસકા ત્યાગ કિયા, એસા સબ કુછ કહેને મેં આતા હૈ. વાસ્તવિકતા તો સ્વભાવ કા લક્ષ કરના, स्वभाव का लक्ष्य किया तो पर का लक्ष्य छूटा, माने वो भी भेद ज्ञान की एक कला है। निमित्त से दृष्टि हटवाते हैं, निमित्त से दृष्टि क्यों हटवाते हैं, कि निमित्त के ऊपर दृष्टि जाते ही ऐसा निमित्तिक भाव उत्पन्न होता है। तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनने को जाते हैं तो भगवान के प्रति अवभाव आता है, भक्ति का भाव आता है, पूजा का भाव आता है, शास्त्र लेके बैठते हैं तो स्वाध्याय का भाव आता है, और किसी संसार के कोई विषयों के अंदर में जाए तो वहाँ का उस तरह का अशुभ भाव का परिणाम होते हैं। तो ये सारे परिणाम निमित्त कैसा होता है, निमित्त जैसा हुआ तो निमित्त क्या वो पता चल जाता है। यहाँ शुभ भाव हुआ तो शुभ का निमित्त, यहाँ अशुभ भाव हुआ तो शुभ का निमित्त। वे नैमित्तिक भाव का जन्म ही न हो, उसलिए गुरुदेव श्री ने सुबह कहा कि कर्म और कर्मरस आदि से लक्ष्य हटाकर, उसकी दृष्टि हटाकर, उसकी उपासना छोड़कर, तूने उनकी सेवा की आज तक, उसके अंदर में फंसते रहा, उसके अंदर में घूमते रहा और वहां से हटकर स्वभाव की एक समय के लिए भी सेवा नहीं की, द्रव्य की सेवा एक समय के लिए भी नहीं की। अब वो कैसे करना, वो कहते हैं समस्त अन्य द्रव्य ना भाव, भगवान नो भाव तो केवल ज्ञान, कर्म नो भाव पुण्य पाप नो रस, ये बदाती लक्ष्य छोड़ी दे, सबसे लक्ष्य छोड़ने की बात करते हैं। अन्य द्रव्यों ना भाव थी भिन्नपणे सेवा में आवता, इन्हें जुदो राग थी निमित्त थी जुदो, राग थी निमित्त थी जुदो, आत्मा नायक भगवान पूर्ण स्वभाव थी भरेलो, जिन चंद्र वितरागी शीतल स्वभाव थी पूर्ण भरेलो भगवान, एना ऊपर लक्ष्य जता एटले के एनी पर्याय में तेनु लक्ष्य थता एटले के एनी पर्याय में द्रव्य नु लक्ष्य थयुं, ए एनी सेवा छे। द्रव्य की सेवा, कैसी सेवा, लक्ष्य उसकी सेवा है। आज तक तूने प्रभु द्रव्य का लक्ष्य नहीं किया तो द्रव्य की सेवा नहीं की, द्रव्य की उपासना नहीं की, और जब द्रव्य की उपासना नहीं की तो शुद्धता का जन्म नहीं हुआ। वस्तु तो शुद्ध है लेकिन जो शुद्ध जानता है, शुद्ध मानता है, उसको शुद्धता प्रकटती है। तो प्रभु तू पहले जान के मैं शुद्ध परमात्मा तत्व हूँ, ऐसा जानकर उसका लक्ष्य करते, उसका हम करते, उसका एकत्व करते, उसकी प्रतीति होते ही वो अनुमान ज्ञान में आ जाता है। जिस अनुमान ज्ञान के अंदर में भगवान आत्मा जैसा ऐसा भाषित हो जाता अनुभव के पहले, वो बात भी दूसरे पैराग्राफ के अंदर में आचार्य भगवान ने जिस तरह से लिया, अपन उसका स्वाध्याय करेंगे। अभी इसको देखते हैं कि पर्याय का लक्ष्य, पर्याय का लक्ष्य स्वभाव के ऊपर आते ही पर्याय का द्रव्य का लक्ष्य हुआ वही उनकी सेवा, ये द्रव्य नी सेवा छे केटलू भर्यू छे। ज्यां भगवान पूर्ण स्वरूप छे एनी उपासना, एनो अर्थ के एनो स्वीकार, एनो सत्कार एटले के एनो आश्रय, लक्ष्य नो अर्थ करो, एनी उपासना नो अर्थ करो, भिन्नपणे उपासित ना करना। उपासना माने क्या, उनका स्वीकार, मैं परमात्मा हूँ उसका स्वीकार, उसका सत्कार यानी कि उसका आश्रय, उसका अवलंबन, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा तत्व का अवलंबन, यही आश्रय है, यही सेवा है, यही उपासना, इसी का नाम संकीर्तन है। जहां स्वभाव का लक्ष्य किया तो जो परिणाम उत्पन्न होता है उसका नाम संकीर्तन है। ये भिन्नपणे उपासों में आओ तो शुद्ध कहवाई छे, अब उसको जहां भिन्नपणे उसकी उपासना की तो उसको शुद्ध कहने में आता है। ये राग ने पर्याय नु लक्ष्य छोड़ी स्वरूप नी सेवा करना, एटले स्वरूप नु लक्ष्य थता तेनी पर्याय में शुद्धता जे थाय, ए शुद्धता ने द्रव्य ने सेवी एटले शुद्धता ए द्रव्य नो स्वीकार करियो, ए शुद्धता नी पर्याय शुद्ध द्रव्य नो स्वीकार करियो, एनी शुद्ध पर्याय में शुद्ध जणाणु, एने शुद्ध कहेवामां आवे छे। एक श्वास पे गुरुदेव सारी बात बता देते हैं। वस्तु की व्यवस्था ही ऐसी है कि जहां राग और पर्याय का लक्ष्य छूटा, मन वहां जहां अपनत्व मिटा, राग की मिठास मिटी, अपनत्व मिटा, तो क्या होता है, स्वरूप की सेवा करना। अब स्वरूप की सेवा करना माने स्वरूप का लक्ष्य होते ही उनकी पर्याय में शुद्धता जो हुई, स्वरूप का लक्ष्य होते ही छे स्वरूप नो लक्ष्य थता तेनी पर्याय में शुद्धता जे थाय, स्वरूप नो लक्ष्य थता तेनी पर्याय में शुद्धता जे थाय, स्वरूप का लक्ष्य होते ही शुद्धता होती है, स्वरूप में अहम होते ही शुद्धता होती है, स्वरूप में एकत्व होते ही शुद्धता होती है। उस शुद्धता ने द्रव्य की सेवा की, द्रव्य ने सेवी एटले शुद्धता ए द्रव्य नो स्वीकार करो। जो पर्याय के अंदर में जो शुद्धता प्रकट हुई उस पर्याय ने मैं परमात्मा हूँ ऐसा स्वीकार किया, यानी पर्याय ने पर्यायत्व घुमाया, पर्याय में पर्याय की अहम बुद्धि गई और पर्याय के अंदर में मैं परमात्मा हूँ ऐसा अहम हुआ, तो उस पर्यायी ने अपना कोने कोना द्रव्य के लिए खाली कर दिया, उस पर्यायी ने अपना सर्वस्व द्रव्य को समर्पित कर दिया। जब वो पर्यायी अपना सर्वस्व द्रव्य को समर्पित कर देती है तो उसको उपासना कहते हैं, उसको सेवा कहते हैं। उसकी सेवा करते ही जो शुद्धता प्रकट हुई तो उस शुद्ध द्रव्य का स्वीकार हुआ, उसकी शुद्ध पर्याय में शुद्ध जड़ाणु अने शुद्ध कहेवामां आवे छे। अब जो उस दृष्टि स्वभाव के ऊपर गई तो शुद्धता हुई, उस शुद्धता के अंदर में जो शुद्धता हुई, उस शुद्धता के अंदर में शुद्ध है ऐसा जानने में आया, उसको शुद्ध कहने में आता है। माने वस्तु जो शुद्ध है वो शुद्ध है, वो ज्ञान के अंदर में जब ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है, समकित होता है, तो उसके अंदर में जानने में आता है। क्या जानने में आता है? शुद्ध है ऐसा जानने में आता है। वो द्रव्य परिणाम के अंदर में नहीं आता, कभी भी नहीं आता, तीनों काल नहीं आता, क्योंकि वो सदा अपरिणामी, सदा कुटस्थ, सदा ध्रुव, सदा त्रिकाल, सदा एक रूप रहने वाली वस्तु, नित्य अपरिणामी, नित्य ध्रुव, नित्य परम परिणामी भाव मात्र वस्तु, वो कभी भी परिणाम के अंदर में नहीं आती। लेकिन जिस वक्त अनुभूति होती है उस वक्त मैं शुद्ध, मैं आकर्ता, मैं भगवान, मैं परमात्मा, बस ऐसा रह जाता है। तो वहां पे द्रव्य और पर्याय का भेद नहीं होता अनुभूति के अंदर में। अनुभूति के अंदर में तो क्षणिक नया उत्पन्न होता हुआ अभेद है, भेद विकल्प मिट गया उस समय के लिए, दब गया उस समय विकल्प, और जैसी वस्तु है वैसी वस्तु अनुभूति में आ गई, स्व संवेदन में आ गई। उसके बाद में एक पैराग्राफ छोड़ के फिर है, तू जारे परना लक्ष्य ने छोड़ी दे अने द्रव्य ने ध्येय बनाओ। द्रव्य ने ध्येय बनावी ने जे पर्याय में एनो सत्कार थयो, उपासना थई, शुद्धता प्रगटी, ए सम्यक दर्शन ज्ञानी पर्याय में आ शुद्ध छे एम जणाई छे। तूने जब पर के लक्ष्य को छोड़कर द्रव्य को ध्येय बनाया, द्रव्य को ध्येय बनाया माने किस तरह से ध्येय बनाया, मैं द्रव्य को जानने वाला या मैं द्रव्य का ध्यान करने वाला और द्रव्य मेरा ध्येय, ये ध्येय नहीं बना। मैं ध्येय, ध्यान विनश्वर और मैं अविनश्वर, ध्येय का ध्यान किया नहीं जाता, ध्येय का ध्यान होता है। जब ध्येय के ऊपर प्रीति हो, ध्येय के ऊपर अपनापन हो, ध्येय के ऊपर एकत्व हो, तो उसकी प्रीति के अंदर में ध्यान हो जाता है। ध्यान करने का कोई विधान जिनेन्द्र शासन में है नहीं, मैं ध्येय हूं तो ध्यान हो गया, ऐसी अद्भुतता है। तूने ध्यान करने का प्रयत्न किया, ध्यान करने का किसका ध्यान, तो के ध्येय का ध्यान। कैसे होगा ध्येय का ध्यान? ध्येय और ध्यान दोनों खड़े रहेंगे, वहां पे ध्येय खड़ा रहेगा क्या? जब पर्याय से रहित द्रव्य, जब पर्याय से रहित द्रव्य ध्यान का ध्येय बनता है, तब पर्याय से सहित द्रव्य ज्ञान का ध्येय बनता है। जब पर्याय से रहित द्रव्य ध्यान का ध्येय बना, अब ध्यान का ध्येय बना माने मैं ध्येय हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, ये द्रव्य का लक्ष्य है, ये द्रव्य का अहम है, द्रव्य का एकत्व है, द्रव्य की रुचि है, ये द्रव्य की सही समझ है, ये द्रव्य का यथार्थ निर्णय है। इसके अंदर में द्रव्य के ऊपर लक्ष्य जाते ही शुद्धता प्रगटी और शुद्धता के अंदर में ये शुद्ध है ऐसा जानने में आता है। उसके बाद का पैराग्राफ अहीं प्रभु एम कहे छे, तारी प्रभुता कोण छे एम ते पूछ्यु तू ने, अने तेनुं स्वरूप जाणवुं जोईए एम ते पूछ्यु तू ने, तेनो उत्तर आ छे। शुद्धात्मा कोण है, तेरी प्रभुता कोण है और उसको जानना चाहिए, इसका स्वरूप जानना चाहिए, ऐसा तूने पूछा था। उसका उत्तर यह है, आ चीज ने परद्रव्य ऊपर बिल्कुल लक्ष्य, संपूर्ण परद्रव्य अने भावनुं लक्ष्य छोड़ी दई, पूर्ण ज्ञायक भाव, शुद्ध भाव ऊपर लक्ष्य जता, जे पर्यायमां शुद्धता थाय, सम्यक दर्शन थाय, ते जीवने ये शुद्ध कहेवामां आवे छे। पर्यायनी शुद्धतानुं भान थयुं, सम्यक दर्शन थयुं, ए अंतरना लक्ष्यने लईने, अंतरना आश्रयने लईने, अंतरना सत्कारने, स्वभावना सन्मानने लईने, त्यारे ते जीवने आ शुद्ध छे एम कहेवामां आवे छे। कितनी स्पष्टता, मने आपको कुछ सोचना नहीं पड़े, कोई सोचने की कोई गुंजाइश ही न रहे, इतनी स्पष्टता। देखिए क्या, ये जो चीज जो है, अपना जो स्वभाव है, वो चीज को कैसे जानना, तो के पर के ऊपर से बिल्कुल लक्ष्य, संपूर्ण परद्रव्य और उनके भाव का लक्ष्य छोड़कर, संपूर्ण, कथनचित नहीं, किंचित नहीं, संपूर्ण, माने पर से उसका संपूर्ण एकत्व छूट जाए, ममत्व छूट जाए, क्योंकि वो ममत्व छूटे बिना स्वभाव के अंदर में एकत्व नहीं हो सकता। पूर्ण ज्ञायक भाव, शुद्ध भाव ऊपर लक्ष्य जता, यहाँ का लक्ष्य छूटा और ज्ञायक भाव के ऊपर, शुद्ध भाव के ऊपर लक्ष्य जाते ही जो पर्याय में शुद्धता हुई, मैंने लक्ष्य जाते ही जो पर्याय में शुद्धता हुई, मैंने लक्ष्य अभी जाए और अनुभूति बाद में हो, ऐसा नहीं होता। गुरुदेव से हमेशा कहता है रोकड़ियों मार्ग छे, जब दृष्टि करे तब आत्मा हाजिर। ऐसी विद्यमान वस्तु है, लक्ष्य जाते ही पर्याय में शुद्धता हुई, सम्यक दर्शन हुआ, उस जीव को ये शुद्ध कहने में आता है। पर्याय की शुद्धता का भान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, कैसे हुआ? ये अंतर का लक्ष्य को लेकर, अंतर का आश्रय को लेकर, अंतर का सत्कार और स्वभाव का सम्मान को लेकर, क्या रहते जीव ने अशुद्ध छेम किया। अंतर का सत्कार, अंतर का आश्रय, अंतर का सम्मान माने क्या? मैं हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, अंतर का सत्कार है, ये अंतर का सम्मान, मैं हूँ बस। मैं पना जो पर पदार्थ में था वहां से संपूर्ण पड़ा हट गया, उसका ममत्व मिट गया, एकत्व मिट गया, स्वभाव की रुचि हुई, स्वभाव की प्रीति हुई, प्रीति के अंदर में प्रतीति हुई, प्रतीति के अंदर में तत्व निर्णय हो गया, तत्व निर्णय होते ही स्वभाव के ऊपर लक्ष्य जाता है और लक्ष्य जाते ही ये शुद्ध है ऐसा जानने में आता है। फिर उसके बाद वाले पैराग्राफ के अंदर में नीचे की तीन पंक्ति, ते ज्ञायक भाव पुण्य पाप पणे थयो नथी, एटले पुण्य पाप ना थनारा एनुं कारण एवो जे शुभाशुभ भाव ए पणे प्रभु ज्ञायक भाव तो थयो ज नथी, तेथी ते प्रमत अने अप्रमत एने लईने पर्याय तेमा नथी, चौदह गुणस्तरना भेदो पण एमां नथी। एवो जे अभेद भगवान ज्ञायक शुद्ध एकरूप प्रभु ए कोने शुद्ध कहेवाय, कोण एने शुद्ध कहे छे के जे शुद्ध तरफनो सत्कार शुद्धनो करी અને પરદ્રવ્યનો જેને આશ્રય અને સત્કાર છૂટી ગયો છે। ભગવાન પૂર્ણાનંદ સિવાય પરચીજને કોઈ પણ અધિકતા, વિશેષતા, અચિંત્યતા, ચમત્કાર છૂટી ગયો છે। બધો અધિક હોય તોય હું, શુદ્ધ હોય તોય હું, ચમત્કારિક ચીજ હોય તો હું, પ્રભુ હોય તો જ હું, સમજાણું કાંઈ। किसी स्वभाव की महिमा बतलाते हैं, स्वभाव की ऐसी अधिकता भासे, स्वभाव की ऐसी महिमा भासे, स्वभाव की इतनी अद्भुतता भासे, तो उसकी अनुभूति हुए बिना नहीं रहती। इसी का नाम सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। और ये जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हुआ, उसके अंदर में ये शुद्ध है ऐसा जानने में आता है। तो ये बात तो अपन ने काफ़ी विस्तार से गुरुदेव के मुखारविंद से सुनी। अब 211 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। तेज एटले ज्ञायक, ते पुण्य पाप पणे थयो नथी, प्रमत अप्रमत पणे थयो नथी, प्रभु द्रव्य तेज, तेज वस्तु ने समस्त अन्य द्रव्य ना भावती भिन्नपणे उपासवामां आवता એની સેવા કરે, તો એની સેવા એટલે સત્કારને આદર કરે દ્રષ્ટિમાં, તો એને એ દ્રવ્ય શુદ્ધ છે। દ્રષ્ટિ કે અંદર મેં આદર ઓર સત્કાર કરે તો ઉસકો દ્રવ્ય શુદ્ધ હૈ। વસ્તુ તો શુદ્ધ હૈ, લેકિન દ્રષ્ટિ મેં લેવે ઉસકો શુદ્ધ ઓર નહીં લેવે ઉસકો ઉસકો શુદ્ધ નહીં હૈ। વસ્તુ તો શુદ્ધ હૈ, લેકિન દ્રષ્ટિ મેં નહીં લેવે તો ઉસકો શુદ્ધ નહીં હૈ। હવે ચોથા પદની વ્યાખ્યા, ઝીણું છે પ્રભુ શું થાય, પ્રભુનો માર્ગ છે સુરાનો, કાયરના કામ નથી ત્યાં, એ પુણ્ય પાપમાં, પુણ્યમાં ધર્મ ને પાપમાં અધર્મ માનનારો પામર મિથ્યા દ્રષ્ટિ એવા જીવનું અહીં કામ નથી। કહે છે અહીંયા તો પુરુષાર્થી અંતરમાં, અંતર સ્વરૂપનો સ્વીકાર કરનારો પુરુષાર્થ છે તેવા પુરુષાર્થવાળાની વાતું છે આ તો। હવે ત્રીજા પદની, ચોથા પદની વ્યાખ્યા ચાલે છે। અબ જો બાત જો ચલી, અભી યહાં પે ધ્યેય કા પાઠ પૂરા હુઆ, ધ્યેય સ્વરૂપ વસ્તુ કેસી હૈ વો બદલાઈ, વસ્તુ એસે હોને પર ભી સંસાર અવસ્થા મેં ઉસકે સાથ મેં ક્યા ઘટિત હુઆ વો બદલાયા, ઉસકા જ્ઞાન કરાયા। સંસાર અવસ્થા મેં એસા હોતે હુએ એસા જ્ઞાન કરાને કે બાદ મેં ભી સ્વભાવ ઉસ જડભાવ રૂપ નહીં હુઆ, પ્રમત અપ્રમત ગુણભેદ રૂપ નહીં હુઆ, યાને કે જડભાવ રૂપ નહીં હુઆ, એસા બદલા કર अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न की उपासना करते ही आत्मा शुद्ध है ऐसा कहने में आता है, अनुभूति में आता है, लक्ष्य में आ जाता है। यहाँ तक कि बात जो कही गई उसके अंदर में तो आत्मा की अनुभूति हो ही जाए ऐसी बात कही, लेकिन यदि किसी को इस बात से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, तो अब दूसरा पैराग्राफ श्रद्धा की बात बतला दी पूरी, अब ज्ञान की बात बतलाते हैं। क्योंकि श्रद्धा की बात में स्वभाव के ऊपर अहम हो जाए उसकी महिमा आते ही, और ऐसा यदि किसी को नहीं हुआ तो ज्ञान का स्वरूप समझकर भी स्वभाव की महिमा आकर सम्यक ज्ञान हो जाए ऐसी अद्भुत बात अब दूसरे पैराग्राफ के अंदर में आचार्य भगवान बतलाते हैं, और ऐसा पूज्य गुरुदेव से उसका स्पष्टीकरण करते हैं। देखिए मूल जो पाठ है, वड़ी दायना એટલે કે બળવા યોગ્ય પદાર્થના આકારે થવાથી અગ્નિને દહન કહેવાય છે। એ તો જો કહેના થા અમને કહે દિયા, ધ્યેય વસ્તુ જો બતલાની થી બતલા દી એસા તો કહે દિયા, વળી વળી મને તદુપરાંત એસી વસ્તુ આપકો બતલા દી, ફિર ભી યદિ એ વસ્તુ સમજ મેં નહીં આઈ તો તદુપરાંત આપ જ્ઞાન કી બાત કરતે, જિસકી બાત કી વજહ સે આપકો સ્વભાવ સમજ મેં આ જાય, સ્વભાવ મેં ક્યા હો રહા હૈ, જ્ઞાન પર્યાય કે અંદર મેં ક્યા હો રહા હૈ, જ્ઞાન પર્યાય કે અંદર મેં યહી જાનને મેં આ રહા હૈ, ज्ञान पर्याय के अंदर में ज्ञान पर्याय का ज्ञान हो रहा है, ज्ञान पर्याय के अंदर में ज्ञायक संबंधी ज्ञान ऐसा भेद रूप ज्ञान हो रहा है कि ज्ञायक की ज्ञायक है क्या है चीज, किसे कर्ता कर्म का अनन्य पना हो, ये पूरी बात अभी दूसरे पैराग्राफ के अंदर में आचार्य भगवान खोलते हैं। अभी इस बात को समझाने के लिए पहले दृष्टांत वड़ी कहकर, वड़ी माने तदुपरांत, जो ध्येय की बात कही उसके उपरांत अभी हम ज्ञान की बात करते हैं, और इस ज्ञान की बात के अंदर में वस्तु की व्यवस्था क्या है, ज्ञान जानता है किस तरह से जानता है, उसमें क्या जानने में आता है, ज्ञान का स्वभाव कैसा है, ज्ञान किसको प्रकाशित करता है किसको प्रकाशित नहीं करता, ये सारी बात पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पैराग्राफ का आचार्य भगवान का हृदय खोलते हुए स्पष्ट की है। तो कहते हैं अभी दायना अटले के बढ़वा योग्य पदार्थ ना आकार थवाती अग्नि ने दहन कहवाई छे, इस बात की शुरुआत की दृष्टांत से समझाना वो सिद्धांत है, सिद्धांत बहुमूल्यवान है, अद्भुत सिद्धांत है, ये सिद्धांत तूने आज तक समझा नहीं प्रभु, उसलिए तेरा ये परिभ्रमण चालू रहा, अब ये परिभ्रमण मिट जाए उसलिए शुरुआत करते हैं दृष्टांत के द्वारा। कि पहले एक बार तू दृष्टांत समझ ले, दायना अटले बढ़वा योग्य पदार्थ ना आकारे थवाती अग्नि ने दहन कहवाई छे, लाकड़ा लकड़ी लकड़ी हो एक, अब लकड़ी के आकार अग्नि हुई तो लकड़ी जलने योग्य है, जलने योग्य लकड़ी के आकार अग्नि हुई तो अग्नि को दहन माने जलाने वाली कहने में आता है, गुजराती में कहे तो ये अग्नि ने बाड़नार कहेवामां आवे छे। हुआ क्या है, लकड़ी के आकार अग्नि हुई है, अभी लकड़ी के आकार जो अग्नि हुई है वो लकड़ी के कारण नहीं हुई है, ये अग्नि के कारण अग्नि, अग्नि के पर्याय अग्नि का आकार जो है वो अग्नि का आकार है, वो लकड़ी का आकार, लकड़ी का आकार लकड़ी में और अग्नि का आकार अग्नि में, दोनों के बीच में कोई आदान प्रदान की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन संसारी जन व्यवहारी जन जगत के जीवों को समझ है कि लकड़ी के आकार अग्नि हुई तो अग्नि बाड़नार छे, अग्नि जलाने वाली है। अब अग्नि जलाती है कि नहीं जलाती है पहले तो तय करना होगा, तब जाके सिद्धांत के ऊपर अपन चर्चा कर पाएंगे कि वो पदार्थ है वो जलने योग्य है। अब जो जलने योग्य पदार्थ है वो अपनी योग्यता से जलता है, अग्नि के कारण नहीं। लकड़ी की उष्ण पर्याय जब प्रकट हुई उत्पाद हुई तो शीतल पर्याय का व्यय हुआ, उष्ण पर्याय का उत्पाद हुआ और उससे वो लकड़ी जलती है, लकड़ी अग्नि के कारण नहीं जलती, अग्नि का द्रव्य गुण पर्याय अग्नि में और लकड़ी का द्रव्य गुण पर्याय लकड़ी में, लकड़ी जलती है अपनी योग्यता से, और लकड़ी जलती है अपनी योग्यता से, ये भी एक व्यवहार का कथन है। सही में देखा जाए तो उनकी लकड़ी की जो पर्याय है वो पर्याय में जलने की योग्यता है, वो पर्याय अपनी जलने की योग्यता की वजह से जलती है, लकड़ी के कारण भी नहीं, मन पर्याय जो परिणमती है उष्णता रूप उसका कारण द्रव्य नहीं है, उनका द्रव्य लकड़ी उनका द्रव्य है वो उनका कारण नहीं है, तो अग्नि तो उसका कारण कैसे हो। देखिए दृष्टांत थोड़ा सूक्ष्म तो है, लेकिन समझना होगा, क्योंकि अपन बहुत आसानी से कह देते हैं एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं करता। जब एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं करता तो अग्नि के कारण लकड़ी जलती, ये बात आई कहाँ से? ये व्यवहारिक जन की यह समझ है, संसारी जन की यह समझ है कि अग्नि को लकड़ी के आकार देखकर लकड़ी को अग्नि जलाने वाली है, अग्नि बाड़नार छे, ऐसा कहने में आता है। देखिए, वड़ी दाइयना बड़वा यज्ञ पधारे आकार थवाती अग्नि ने दहन कहवाई छे। शब्द क्या है? कहवाई छे। जीव को पदार्थ की स्वतंत्रता का भान हो जाए, वस्तु की व्यवस्था समझ में आ जाए तो बात बहुत स्पष्ट होती है। अब जिसको लकड़ी का और अग्नि का परिचय नहीं है, उसको ऐसा यदि समझाया जाए कि लकड़ा ने बाड़े थे अग्नि, ठीक है, एक व्यवहार से संयोग देखकर एक कथन किया गया। फिर उससे आगे चल के उसको कहते हैं कि उष्णते अग्नि, पहले लाकड़ा लकड़ी को जलावे सो अग्नि, उससे उसको परिचय करवाए, जब वो परिचय हुआ तो क्या उष्ण से अग्नि, और उससे आगे चल के कहते हैं अग्नि सो अग्नि। बस ये तीन बात यहाँ पे आचार्य भगवान को समझा रहे हैं। असद्भुत व्यवहार का कथन, सद्भुत व्यवहार का कथन और निश्चय का कथन। लाकड़ा ने बाड़े ते अग्नि असद्भुत व्यवहार नहीं नु कथन छे। आचार्य भगवान की परम निष्कारण करुणा है कि जगत के संसारी जीव जहां पर खड़े हैं वहां से उसको उठाते हैं, क्योंकि उसको तो अग्नि सो अग्नि उसको पता ही नहीं है। उसको तो लकड़ी को जलाए सो अग्नि, कोलसा को जलाए सो अग्नि, छाणा को जलाए सो अग्नि, उसको ये परिचय ही उसी चीज का, तो जिस चीज का परिचय वहां से उसको बताते हैं कि वो लकड़ी अग्नि लकड़ी को जलाती है, तो उसको बाड़नार जलाने वाली कहने में आता है। जब ये बात उसको समझ में आ जाती है तो आगे कहते हैं तो पण दायकृत अशुद्धता तेने नथी, कहने में आता है जलाने वाली, कहने में आता है बाड़नार, फिर भी तो पण ऐसा कहने में तो आया कि लकड़ी को जलावे सो अग्नि, ऐसा कहने में तो आया, तो पण दायकृत अशुद्धता उसे नहीं है। यानी लकड़ी है तो अग्नि जलती है ऐसा नहीं है, लकड़ी करता और अग्नि उसका कर्म ऐसा नहीं है। गुरुदेव श्री बहुत समय दृष्टांत देते थे घड़ा का, कुंभार तो घड़ा नहीं बनाता लेकिन मिट्टी से भी घड़ा नहीं बनता। इस बात का अपन को परिचय करना होगा, यदि तत्व का निर्णय करना है तो इस बात पे अपन को आना होगा, वस्तु की व्यवस्था को भली भांति समझना होगा। अपन इस वस्तु की व्यवस्था के अंतर्गत कभी वस्तु को समझने की कोशिश नहीं करते। अब बोले मिट्टी से घड़ा नहीं बनता, कुंभार से तो नहीं बनता, चाक से तो नहीं बनता, लेकिन मिट्टी से घड़ा नहीं बनता। वो घड़े की पर्याय की अपनी स्वतंत्रता है, घड़ा रूप परिणाम ने की, वो पर्याय से वो घड़ा बनता है, तत्समय की योग्यता। दायकृत अशुद्धता तो पण दायकृत अशुद्धता तेने नथी। प्रभु तूने इस बात को आज तक समझा नहीं है। वो आचार्य भगवान इस बात को बतलाते हैं और गुरुदेव श्री इसका स्पष्टीकरण के तहत अपने गुरुदेव के माध्यम से इस बात को पढ़े। दो सौ ग्यारहवां पृष्ठ अंतिम पैराग्राफ, दायाना आकारे थवाथी अग्नि ने दहन कहवाय छे, बाड़नार कहवाय छे। शू कहे छे? अग्नि ने बाड़नारी कहवाय छे, ते बढ़वा योग्य पदार्थना आकारे थवाथी। એ લાકડાને છાણાને બાળે ત્યારે આકાર તો એવો થાય ને, જેવા છાણાને લાકડા છે એવો આકાર થાય ને એનો, પણ એ આકાર કાંઈ એને લઈને થયો નથી, એ તો અગ્નિનો આકાર છે। અપન દ્રષ્ટાંત કા વિશ્લેષણ કરે, અભી સિદ્ધાંત કા વિશ્લેષણ જબ પ્રસંગ આયેગા તબ કરેંગે, અભી પહેલે દ્રષ્ટાંત કો સમજે कि अग्नि जैसा लकड़ी लंबी हो तो अग्नि लंबी फैलती है, लकड़ी ऐसी हो तो अग्नि ऐसे फैलती है, तो जैसे लकड़ी का आकार है उस तरह से अग्नि का आकार हुआ। अब अग्नि का ऐसा आकार देखकर ये कहा गया कि अग्नि जलाने वाली है, ऐसा कहने में आता है। अब कहते हैं बढ़वा योग्य पदार्थ ना आकार है तवाती है लाकड़ा ने छणा ने बाड़े त्यारे, आकार तो ये वो था ही ना, जैसा पदार्थ हो ऐसा आकार हो, लेकिन वो छणा और लाकड़ा का आकार हुआ वो आकार उनके कारण नहीं हुआ, वो तो अग्नि का आकार है, खुद का आकार है, खुद का परिणमन है, अग्नि का परिणमन अपना अपने से है, उनकी व्यंजन पर्याय है, वो लकड़ी का आकार लकड़ी के अंदर में और अग्नि का आकार अग्नि के अंदर में, दूसरे के एक दूसरे के बीच में कोई आदान प्रदान की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन संयोग में अग्नि को देखकर अग्नि को जलाने वाली कह दिया, लोटा के अंदर में घी को देखकर घी का लोटा कह दिया, अब लोटा घी का नहीं होता, लोटा तो लोटा का हो, चांदी का हो, तांबा का हो, पीतल का हो, सोना का हो, स्टील का हो, अब घी का लोटा कहां से। लेकिन अनादिकाल से संसारी जीव को इसी तरह का परिचय है, इसी तरह का अभ्यास है और इसी तरह का संस्कार भी लेकर वो चलता है, तो उसका जिस बात से परिचय है उससे बात को समझाते हैं, तो पण दायकृत असुत्ता तेने, तो उसमें गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, बढ़वा योग्य वस्तु ने आकारे थई माटे नहीं ने आकारे पराधीन अग्नि थई, ये बढ़वा योग्य ने आकारे थई पराधीन एम नथी। 212 पृष्ठ, वो जलने योग्य पदार्थ के आकार अग्नि हुई तो उसके कारण हुई है ऐसा नहीं है, ये तो दृष्टांत है, वो आत्मा में तो पछी उतर से दायना बढ़वा योग्य पदार्थ ना आकार एटले छाणू लाकड़ू कोलसा तेना आकार अग्नि थवाती दहन बाळनार कहेवाय छे, छे ने दहन एटले बाळनार, जलती है, जलती है उसले उसको बाळनार कहने में, तो पण दायकृत असुत्ता तेने नथी, बढ़वा योग्य पदार्थनो जेवो आकार अहीं थयो माटे तेनी अपेक्षाथी त्यां आकार थयो छे एवी असुत्ता पराधीनता एने नथी। लकड़ी के कारण अग्नि उस आकार से हुई है, अग्नि को लकड़ी की पराधीन है कि लकड़ी हो तो अग्नि जले नहीं तो अग्नि नहीं जले, ऐसी अग्नि को लकड़ी की पराधीनता नहीं है। दायकृत जलने योग्य पदार्थ के कारण अग्नि जलती है ऐसा है क्या?
नहीं।
तो कहते हैं कि पराधीनता एने नहीं, अग्नि नो आकार थयो छे पोताथी थयो छे, एवे आकारे अग्नि पोताथी थई छे, ए छाणू ने लाकड़ू ने कोलसो ए आकारे अग्नि थई माटे बढ़वा योग्य ने आकारे थई, तो बढ़वा योग्य अग्नि ने परनी पराधीनता छे एम, अग्नि ने बढ़वा योग्य एटले के पर पदार्थनी पराधीनता छे एम नथी। बढ़वा योग्य पदार्थ ना आकारे थवाती अग्नि ने बाळनार कहेवाय छे, तो बाळनार नो अवाज आव्यो तो के बढ़वा योग्य छे तेने बाळे छे एटले के तेने आकारे थई छे एम नथी, ए वक्ते पण अग्नि पोताना आकारे थयेली छे, बढ़वा योग्य पदार्थ ना आकारे अग्नि थई, ए अग्नि पोताना आकारे स्वयं पोताथी थई छे, उनकी ये स्वतंत्रता है, उनकी ये स्वाधीनता है, उनकी ये सतता है, वो स्वयं अपने आकार से उस आकार रूप हुई, उसके अंदर में उसका कारण लकड़ी नहीं है, लकड़ी की पराधीनता अग्नि को नहीं है। यदि लकड़ी के कारण यदि अग्नि जलती है तो लकड़ी करता होगा और अग्नि उसका कर्म होगा, तो चाहे तो अग्नि का ही अभाव हो जाएगा या तो लकड़ी का ही अभाव हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, दो पदार्थ ही नहीं रहेगा, एक का कर्ता कर्म दूसरे पदार्थ के बीच में यदि अपन स्थापना करेंगे तो क्या हो? जहां द्रव्य पर्याय के बीच में कर्ता कर्म लागू नहीं पड़ता वहां दो पदार्थ के बीच में कर्ता कर्म कहां से लागू पड़े? हजी तो दृष्टांत छे पछी सिद्धांत तो अंदर उतर, सभी भी गुरुदेव दृष्टांत को ही समझा रहे हैं, प्रभु तूने इस बात को कभी समझा नहीं, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, इस बात को तूने भली भांति नहीं समझा, भली भांति समझा होता तो लकड़ी को जलाए सो अग्नि ऐसा बात तेरे अंतरंग में खड़ी नहीं होती, और यदि ऐसा कहने में भी आया तो पण दायकृत असुत्ता तेने नथी, तो पण कहवाय छे तो पण अग्नि लाकड़ा ने बाळे छे एम कहवाय छे तो पण एवुं नथी, कारण के एने दायकृत एटले बढ़वा योग्य पदार्थ ने जो अग्नि बाढ़ती हो या अग्नि ने कारण पदार्थ बढ़तो हो तो ये दायकृत तो सुधता था से એટલે બે પદાર્થ એક થઈ જશે એવું નથી એસા નહીં હૈ પ્રભુ સિદ્ધાંત તો દેખીએ તો આ દાયકૃત બળવા યોગ્ય પદાર્થને આકારે થયેલી હોવાથી અશુદ્ધતા અગ્નિને નથી એ અશુદ્ધતા અગ્નિને એને લઈને નથી એ તો અગ્નિ પોતાના આકારે થયેલી છે જે આકાર છે એ અગ્નિનો આકાર છે બળવા યોગ્ય પદાર્થનો આકાર એ નથી તેવી રીતે અબ ફિર તેવી રીતે કરકે ગયાકાર સે બાત શરૂ કરેંગે ઇધર મેં દાયાકાર તો ઇધર મેં ગયાકાર દાયાકાર બળવા યોગ્ય પદાર્થને આકારે થવાથી તેને જેમ દહન કહેવાય છે એમ જ્ઞાન જ્ઞેયાકાર થવાથી જ્ઞેયની સાપક્ષતાની અંદરમાં જ્ઞેયને જાણનાર કહેવાય છે અગ્નિને બાળનાર કહેવાય છે અને જ્ઞાનને જાણનાર કહેવાય છે અગ્નિને બાળનાર કહેવાય છે અને જ્ઞાનને જાણનાર કહેવાય છે એમ છતાં દાયકૃત અશુદ્ધતા નથી એમ અહીંયા પણ જ્ઞેયકૃત અશુદ્ધતા નથી એની ચર્ચા કરશે અદ્ભુતતાથી અદ્ભુતતામાં જરા આપણે એની શરૂઆત કરીએ 8-10 મિનિટનો ટાઈમ છે તેવી રીતે જ્ઞેયાકાર થવાથી જ્ઞાન સ્વરૂપી પ્રભુ જ્ઞેય જણાવવા યોગ્ય પદાર્થનો આકાર અહીં આવવાથી એ જાણે કે જ્ઞેયકૃત આકાર છે એમ નથી એ તો જ્ઞાનનો પોતાનો જ આકાર એ રીતે પરિણમ્યો છે જીતને જેસે ગેય પદાર્થ જ્ઞાન કે અંદર મેં પ્રકાશિત હોતે હૈ પ્રતિબિંબિત હોતે હૈ તો જેસે ગેય હૈ એસા આકાર યહાં પે હુઆ તો ઉસકો ગેયાકાર કહેને મેં આતા હૈ જેસા ગેય એસા આકાર જ્ઞાન કે અંદર મેં હુઆ તો ઉસકો ગેયાકાર કહા દેખીએ મૂળ પાઠ કે અંદર મેં ક્યા તેવી રીતે જેસે અગ્નિ કા દ્રષ્ટાંત દિયા તેવી રીતે જ્ઞેયાકાર થવાથી તે ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે તો પણ જ્ઞેયકૃત અશુદ્ધતા તેને નથી તેવી રીતે જ્ઞેયાકાર થવાથી તે ભાવને જ્ઞાયકપણું એટલે જાણનાર છે એમ પ્રસિદ્ધ છે તો પણ વા પણ તો પણ અહીંયા પણ તો પણ જ્ઞેયકૃત અશુદ્ધતા તેને નથી હવે ઇસકા પૂરા વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી બહોત સ્પષ્ટ કરતે હૈ અપન ગુરુદેવશ્રી કે માધ્યમ સે ઇસ બાત કો દેખે ઓર સમજે એક બાત સમજને યોગ્ય હૈ કે વસ્તુ કી વ્યવસ્થા ક્યા હૈ જ્ઞાન કે અંદર મેં સ્વજ્ઞેય ઓર પરજ્ઞેય જ્ઞાન કે અંદર મેં પ્રકાશિત હોતે હૈ પ્રતિબિંબિત હોતે હૈ પ્રતિભાષિત હોતે હૈ તો એ જો આકાર જો હોતા હૈ જેસા જ્ઞેય એસા આકાર હુઆ જ્ઞાન કે અંદર જેસે જ્ઞેય એસા આકાર હુઆ અભી એ જ્ઞેયાકાર હૈ કે જ્ઞાનાકાર હૈ એ જ્ઞાન કા પરિણમન હૈ ને જ્ઞેય કા પરિણમન હૈ ગેય કા પરિણમન ગેય કે અંદર મેં ઓર જ્ઞાન કા પરિણમન જ્ઞાન કે અંદર મેં તો યહાં પે જો ગેયાકાર જેસા ગેય હૈ એક વાસ્તવિકતા સે દેખા જાય તો જ્ઞાન કભી ગેયાકાર હોતા હી નહીં હૈ લેકિન ગેય કી સાપેક્ષતા મેં ઉસકો ગેયાકાર કહા જાતા હૈ ગેય કી સાપેક્ષતા મેં ઉસકો ગેયાકાર કહા જાતા હૈ ગેય કી સાપેક્ષતા જ્ઞાન કો હૈ હી નહીં બિલકુલ યદિ ગેય કી સાપેક્ષતા જ્ઞાન કો હો જાય તો ગેય કૃત અશુદ્ધતા હો જાય જ્ઞાન સદાય જ્ઞાનાકાર રહેતા હૈ અપનને વસ્તુ કી વ્યવસ્થા કો થોડી ગહેરાઈ સે સમજને કી કોશિશ કરની હોગી દેખીએ એ જ્ઞાન કી વ્યવસ્થા ઇતની અદ્ભુત હૈ ઇતની અલૌકિક હૈ કે જહાં સે બાત કહેને મેં આતી હૈ એસે જ્ઞાનીઓને અપને અંતરંગ કે અંદર મેં અપને સ્વભાવ કો દેખા દેખકર બહાર આકર એ સ્વભાવ કો બતલાયા ઉસ સ્વભાવ કો બતલાયા અપન ઉસકો શાંતિ સે અપને અભિપ્રાય કો એક પોટલી મેં બાંધ કર એક સાઇડ મેં રખ મેં ફેંકને કા નહીં કહેતા એક સાઇડ મેં રખના અપને પાસ કોઈ અસુવિધા નહીં હૈ લેકિન ગુરુદેવ જ્યાં સે કહે રહે હૈ આચાર્ય ભગવાન જ્યાં સે કહે રહા હૈ વસ્તુ કા સ્વરૂપ જેસા હૈ એસા જો બતલાયા જાતા હૈ ઉસકો ઉસ તરહ સે સુને એક બાર સુનકર ઉસકે ઉપર વિચાર કરે લાલચંદભાઈ હંમેશા કહા કરતે થે કે સુનના સુન કે સમજ મેં નહીં આવે તો હા ભી મત કરના ઓર બિના સમજે બિના સુને બિના સમજે ના ભી મત કરના પહેલે સુનના અચ્છી તરહ સે સુનના અપને વિચાર કો એક તરફ રખ કર ભલી ભાંતિ સે ઇસ બાત કો સુન કર સમજ કર વિચાર કરો વિચાર કરકે દેખો એ બાત સમજ મેં આતી કે નહીં આતી અપન યદી દૂસરા એક દ્રષ્ટાંત લે કે લિયા થા અપને દો દિન પહેલે कि पानी के अंदर में चंद्र प्रतिबिंबित होता है। अब चंद्र ये ही है और पानी के अंदर में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। अब इसके अंदर में चंद्र का पानी के अंदर में क्या है, किसी को पूछा जाए तो कहता है क्या दिखता है, तो कहता चंद्र दिखता है। क्या दिखता है, तो पानी की निर्मलता के अंदर में चंद्र दिखता है। क्या दिखता है, तो क्या पानी पानी और पानी दिखता है। ऐसे तीन दृष्टिकोण है, किसी को चंद्र दिखता है, किसी को पानी का चंद्र दिखता है पानी की निर्मलता के अंदर में, और किसी को पानी पानी और पानी दिखता है। अब वो जो चंद्र दिखता है वो चंद्र दिखता है कि वो पानी का चंद्र है। जो चंद्र ऊपर में है उनके द्रव्य गुण पर्याय में से कौन सा अंश इस पानी के अंदर में आया है। ये पानी की निर्मलता है, पानी की स्वच्छता है। जिस निर्मलता और स्वच्छता के अंदर में जैसा चंद्र है, जैसा है वैसा इसके अंदर में प्रतिबिंबित होता है। तो ये जो चंद्र है वो पानी का चंद्र है, चंद्र का चंद्र नहीं है। ये चंद्र पानी का बना हुआ, पानी का मटेरियल का बना हुआ, इसके अंदर में चंद्र का कोई अंश भी इसके अंदर में लगा नहीं है। और वास्तविकता देखा जाए तो ये पानी का चंद्र है कि पानी का पानी है। दीपक के अंदर में घटपट प्रकाशित तो होते हैं, घटपट प्रकाशित तो होते हैं। सो घटपट हो, सो पदार्थ हो, घट माने घड़ा और पट माने वस्त्र, सो वस्त्र हो, सो पदार्थ हो सामने, और उसमें दीपक का प्रकाश करने पे सो पदार्थ प्रकाशित तो होते हैं। अब सो पदार्थ में से आप 99 पदार्थ को हटा दो, एक पदार्थ को रख दो, प्रकाश कितना बढ़ जाएगा, क्या होगा। यदि उस ज्ञेयों के कारण ज्ञान हुआ होता, पदार्थों के कारण पदार्थों पर ज्ञान, दीपक का प्रकाश के वजह से यदि वो प्रकाशित नहीं होता, पदार्थों के कारण यदि वो प्रकाशित होता, तो जब 99 पदार्थ हट गया तो इसका प्रकाश भी हट जाना चाहिए, कम जाना चाहिए। लेकिन प्रकाश तो जैसा है वैसा रहता है। तो घटपट प्रकाशित होता है कि घटपट संबंधी प्रकाश प्रकाशित होता है कि प्रकाश का प्रकाश प्रकाशित होता है, प्रकाश पर्याय का प्रकाश प्रकाशित होता है कि दीपक का प्रकाश प्रकाशित होता है कि दीपक सुदीपक है। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री अपन को समझाएंगे भली भांति। अपन थोड़े ठंडे दिमाग से धीरज रखकर शांति से गुरुदेव श्री की एक एक बात सुने, उसके ऊपर विचार करें, विचार करके तत्व निर्णय करें। युग है तत्व निर्णय का। अपन ने गुरुदेव श्री के पास से जितनी बात सुनी है, जितनी विविक्षाओं से बात सुनी, जितनी नई की अपेक्षाओं से बात सुनी, अभी वक्त आया तत्व निर्णय करने का। तत्व निर्णय तभी ही होगा जब सभी का अपना स्वतंत्र स्वाध्याय होगा। गुरुदेव श्री की बात सुनकर अपना स्वयं स्वाध्याय करके इसका तत्व विचार करें कि वस्तु की व्यवस्था क्या है। ज्ञान के अंदर में यही जानने में आता है कि ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है कि ज्ञायक का ज्ञान होता क्या है। इस बात का अपन चिंतन करें, विचार करें, मनन करें, तो हम उस बात पे आएंगे जिस बात पे आचार्य देव ले जाना चाहते हैं। वो तो उस बात पे ले जाना चाहते हैं कि ज्ञायक ते तो ज्ञायक छे, ज्ञात ते तो तेज छे। उस बात पे ले जाना चाहते हैं गुरुदेव के खेस को पकड़ते हुए, गुरुदेव के हाथ को पकड़ते हुए हम उस ज्ञायक स्वभाव के भीतर कैसे प्रवेश कर सकते हैं, इसका विधि विधान इस ग्रंथादिराज के प्रवचनों में पूज्य गुरुदेव से ने बतलाया है। अपने सरल स्वभाव से अपने अपने अभिप्राय की जो गांठ बंधी हुई है उसको छोड़कर ज्ञान के ज्ञायक की क्या व्यवस्था है उसको समझे, समझकर स्वभाव का सहज मात्रा में सबके अंतरंग में उनका लक्ष्य हो, और लक्ष्य होते ही उसी क्षण सबके अंतरंग में समकित प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ। Yeah.